नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर में, जिसका नाम है हार्ट हेल्थ विद डॉक्टर रोहित साने। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त डॉक्टर अमन कपूर, और आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट के टॉपिक के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारा हिंदी में पहला पॉडकास्ट है, पहला कन्वर्सेशन है जो हम हिंदी भाषा में लेके आए हैं। ऐसे ही हम बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी भाषा के मिक्स्ड कन्वर्सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे, जहां पर हम चर्चा करेंगे कैसे आप अपने हार्ट की हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भारत के जाने माने हार्ट डिजीज यूनिवर्सल एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित साने। डॉक्टर साने सर, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड के अंदर में। हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक के बारे में जब हम बात करते हैं तो डर तो लगता ही है। हार्ट अटैक का नाम सुन के ही हर कोई डर जाता है। सबसे बड़ा डर ये लगता है जब चेस्ट में पेन होता है या हार्ट अटैक सस्पेक्टेड रहता है या हार्ट अटैक होता है। इस स्थिति में जब डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल में एक इंसान पहुंचता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपको अर्जेंटली सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अर्जेंटली आपको या तो एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा या तो बाईपास करना पड़ेगा। तो पहले एंजियोग्राफी किया जाता है उनका, उसके बाद में कहा जाता है एंजियोप्लास्टी या तो बाईपास अर्जेंटली करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कई लोग घबरा जाते हैं। दो चीजें होती हैं, या तो कुछ लोग करा लेते हैं, कुछ लोग डरे होते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कितनी अर्जेंट होती है एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना। दूसरा, इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये दो क्वेश्चन है।
अब हम लोग ऐसा पकड़ के चलते हैं कि हार्ट अटैक उस बंदे को हो चुका है, और हार्ट अटैक के नॉर्मली जो 6 घंटे होते हैं, जो 6 घंटों में अपने को वो एक स्पेशल इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन को अगर दिया जाए या वो दवाइयां दी जाए तो उन दवाइयों के वजह से ये हार्ट अटैक हम रोक सकते हैं उन 6 घंटों में, जिनको हम 6 golden hours करके बुलाते हैं। हम लोग ऐसा पकड़ के चलते कि वो 6 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं, और अगर ये 6 घंटे अब बीत चुके हैं और अब हमको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बताई जा रही है, तो इस एंजियोप्लास्टी का अब यहाँ पे बहुत ही छोटा रोल हो जाता है। अगर हम ठीक तरह से समझ ले तो हार्ट अटैक मतलब क्या, तो हार्ट अटैक मतलब एक खून की गुत्थी होती है। ये खून की गुत्थी अगर हमारे हार्ट के खून के नली में जाकर के अटक जाती है तो ये खून की गुत्थी वहां पे अटकने के वजह से उस हार्ट के मसल को जो अच्छा खून का सप्लाई पहुंचना चाहिए था, वो अगर खून का सप्लाई अच्छा अगर उस हार्ट के मसल को नहीं पहुंचा था तो उतने समय में वो हार्ट का मसल डैमेज हो गया, और उस पूरे डैमेज को वो पूरे 6 घंटों की जो ये पूरी अंदर जंग चल रही थी, इस जंग को, ये पूरे 6 घंटों के डैमेज को हम कहते हैं मेडिकल भाषा में हार्ट अटैक। अगर ठीक तरह से आप समझ लिए होंगे तो हार्ट अटैक ये किस वजह से हुआ, तो उस खून के गुत्थी के वजह से। अब इस खून के गुत्थी के जैसा ही और एक शब्द आता है जिसको बोला जाता है चर्बी की गुत्थी। नॉर्मली जब एंजियोग्राफी हम यूं ही करते हैं तो उस एंजियोग्राफी में जो हमको दिखाई पड़ता है वो होता है फैट ब्लॉक, या तो जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं, या वो होती है चर्बी की गुत्थी। तो चर्बी की गुत्थी और खून की गुत्थी, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो फर्क दोनों में है वो चर्बी की गुत्थी चर्बी से निर्माण होती है, खून की गुत्थी खून में से निर्माण होती है। चर्बी की गुत्थी अपने शरीर में निर्माण होने के लिए वक्त कितना लेती है, तो 2 से 6 साल। वही खून की गुत्थी जो हार्ट अटैक का निर्माण करती है, वो खून की गुत्थी निर्माण होने के लिए अपने शरीर में समय कितना लगता है, तो 2 से 6 सेकंड्स। चर्बी की गुत्थी अगर हाथ में पकड़ लो तो रुई के जैसा आपको सॉफ्ट महसूस होगी। खून की गुत्थी जो हार्ट अटैक निर्माण करती है वो पत्थर की तरह सख्त महसूस होगी। चर्बी की गुत्थी खुद ब खुद खून का सप्लाई कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकती, वाइल खून की गुत्थी खून का सप्लाई ब्लॉक किए सिवाय और कुछ कर नहीं सकती। तो चर्बी की गुत्थी ये डायरेक्टली हार्ट अटैक खुद ब खुद ला नहीं सकती, और खून की गुत्थी मतलब ब्लड क्लॉट ये हार्ट अटैक के सिवाय और कुछ ला नहीं सकती। तो अगर आपको हार्ट अटैक आया हुआ है तो ये हार्ट अटैक उस खून की गुत्थी के वजह से था, वो ब्लड क्लॉट के वजह से था, उस चर्बी की गुत्थी के लिए नहीं था। पर अगर हम एंजियोप्लास्टी के बारे में सोच रहे हैं तो एंजियोप्लास्टी ये चर्बी की गुत्थी के ऊपर का इलाज है, खून के गुत्थी के ऊपर का इलाज नहीं है। एंजियोप्लास्टी ये फैट प्लाक एथेरोमेटस प्लाक के ऊपर का इलाज है, ब्लड क्लॉट के ऊपर का इलाज नहीं है। तो अगर हमको एंजियोप्लास्टी के बारे में बताया गया है और हमारे दिमाग में डर है तो सिंपल से इन्वेस्टिगेशन हमको करा के लेने। अगर हार्ट अटैक के बाद हमको किसी ने एंजियोप्लास्टी के बारे में सजेस्ट किया है तो सिंपल सी चीज हमको ये देखनी है कि अगर हमारे हार्ट में ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, जो हमको टू डायमेंशनल इको कार्डियोग्राफी, ये एक टेस्ट होती है, ये 2D इको अगर हम करा देते हैं और उसमें अगर आपको दिखाई पड़ता है कि हमारे हार्ट की जो मसल थी, जो हार्ट अटैक की वजह से ऑलरेडी उस मसल की डैमेज हो चुकी है, अगर वो डैमेज ऑलरेडी होने की वजह से हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो चुका है, तो उस चीज में अब एंजियोप्लास्टी का कोई रोल दिखाई नहीं देता, क्योंकि एंजियोप्लास्टी करने के बाद ये जो डैमेज्ड मेरा मसल है ये फिर से नॉर्मल होने के चांसेस बहुत कम है। सो द फर्स्ट टेस्ट दैट यू गेट टू डू पोस्ट हार्ट अटैक इज गोइंग टू बी अ 2D। अब हार्ट अटैक के 6 हफ्तों के बाद फिर से हम दूसरे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस टेस्ट। ये स्ट्रेस टेस्ट मतलब आपको साधारण 9 से 15 मिनट उस ट्रेडमिल पे दौड़ना होता है और उसमें हम देखते हैं आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी। स्ट्रेस मतलब वो हार्ट अटैक के टाइम जो स्ट्रेस निर्माण होता है हार्ट के ऊपर, उसको टॉलरेट करने की ताकत आपके हार्ट में है या नहीं। अगर ये स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी में अगर आप 9 या 15 मिनट जो भी प्रोटोकॉल होगा उस पे आप अगर पूरी तरह से दौड़ नहीं पाए और उसमें आपको दिखाई पड़ा कि खून का सप्लाई कम पड़ा हुआ है, जो खून का सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, तो उसके लिए आपके पास एंजियोप्लास्टी एक उस पे सोल्यूशन है, लेकिन उसके साथ आपके पास नॉन इन्वेजिव कई सारे सोल्यूशंस होते हैं जो आप लेकर के आपके खून के सप्लाई को, उस हार्ट के डैमेज्ड पार्ट को खून का सप्लाई बढ़ा करके फिर से हार्ट को आप नॉर्मल करवा सकते हो। सो सेकेंड इन्वेस्टिगेशन इज स्ट्रेस टेस्ट। द थर्ड इन्वेस्टिगेशन दैट यू कैन गेट इट डन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एन एंजियोग्राफी विद अ फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व असेसमेंट, मतलब FFR की असेसमेंट हो सकती है एंजियोग्राफी थ्रू, जो सिर्फ ब्लॉकेज नहीं बताएगा तो ब्लॉकेज के आगे जाने वाला खून का सप्लाई आपके हार्ट को इनफ हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको वो बताएगा। तो अगर आपके हार्ट को आने वाला खून का सप्लाई ब्लॉकेजेस के बियॉन्ड, अगर जाने वाला खून का सप्लाई अगर इनफ है 0.8 पॉइंट के ऊपर है तो आपको एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो खून का सप्लाई 0.8 के नीचे है और आपको अगर आपका खून का सप्लाई विदाउट एंजियोप्लास्टी आपको इम्प्रूव करना है तो वो भी पॉसिबल है। सो एंजियोप्लास्टी अगर बोली जाती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि एंजियोप्लास्टी जैसा ही इफेक्ट, एंजियोप्लास्टी जैसी ही इम्प्रूवमेंट, एंजियोप्लास्टी जैसे ही बेनिफिट्स आपको एंजियोप्लास्टी बिना करे आपको चाहिए होंगे, वो भी अवेलेबल है और उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं। बट अकॉर्डिंग टू मी आगे जाकर के ये समझना जरूरी है आप एंजियोप्लास्टी करे या ना करे। एट द एंड ऑफ द डे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो अगर कर देते हो तो आप रास्ता कौन सा भी इस्तेमाल करो, आप इन्वेजिव एंजियोप्लास्टी का ले लीजिए या नॉन इन्वेजिव आप खून का सप्लाई बढ़ाने के बारे में देख लीजिए, दोनों के बाद भी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत जरूरी होगा। और ये लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से अपना हार्ट तो इम्प्रूव होगा ही फंक्शनिंग में, एज वेल आगे आने वाला धोखा जो है अगले हार्ट अटैक का, वो भी आप कई प्रतिशत से कम कर पाओगे।
थैंक यू डॉक्टर सानी, आपने अभी जो डिटेल में हमें समझाया है, स्पेशली डर कम करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपने साइंटिफिक मेथड हमें बताए, जिसके अंदर में कुछ चेकअप्स है, जैसे 2D एको है, स्ट्रेस टेस्ट है। बट एक स्ट्रेस टेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके आते ही हर कोई डर जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है कि मेरे हार्ट पे स्ट्रेस आएगा, मैं ट्रेडमिल पे चलते चलते अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे चेस्ट पेन हुई। तो ये जो डर है इसके अगेंस्ट स्ट्रेस टेस्ट क्या है, और ये डरना हमें कितना जरूरी है, और ये कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, थोड़ा हमें प्लीज गाइड कीजिएगा।
तो ये स्ट्रेस टेस्ट को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अगर हार्ट अटैक के बाद अपना इजेक्शन फ्रैक्शन इज बियॉन्ड 40 और 45%, नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन जो 50-55% का होता है, अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट अटैक होने के बावजूद आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 45% से ज्यादा है, तो आप जरूर ये स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो। अगर आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन ये 40 या 45 से कम है, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार आप एक अलग टेस्ट करवा सकते हो, जिसको बोला जाता है 6-मिनट वॉक टेस्ट। बट डर जो आपके दिमाग में स्ट्रेस टेस्ट का पड़ा हुआ है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्ट्रेस टेस्ट करवाते वक्त डॉक्टर्स आपके साथ खड़े होते हैं, आपको चलना होता है उस ट्रेडमिल पर सिर्फ 9 से 15 मिनट का। उतना चलते वक्त आपके सीने को हमने ECG के सारे इलेक्ट्रोड्स लगाए होते हैं, आपका हार्ट रेट, आपके हार्ट को आने वाला खून का सप्लाई, एज वेल एज आपका BP, ये सारी चीजें मॉनिटर होती है, और आप हमारी नजर हमारे पेशेंट्स की कंटिन्यूस सिम्टम्स पे रहती है कि अगर कोई भी छोटा भी सिम्टम अगर दिखाई पड़ता है तो वो हार्ट पे स्ट्रेस आने से पहले ही वो टेस्ट को रोका जाता है, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर द हार्ट इज गेटिंग स्ट्रेस। तो दिस बिकम्स अ ब्यूटिफुल टेस्ट, क्योंकि आगे जाते वक्त जब कोई ट्रीटमेंट आप कोई भी करवाओगे, वो इन्वेसिव हो या नॉन इन्वेसिव हो, ट्रीटमेंट कोई भी करवाओगे तो उस ट्रीटमेंट के वजह से अपनी स्ट्रेस टेस्ट कितनी इंप्रूव हो गई है, ये क्लियर प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस इस टेस्ट का मिलता है कि फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन हम इसमें से कर सकते हैं कि आगे जाते हुए कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपके हार्ट की जो मरम्मत आप करवा रहे हो उस वजह से आपका हार्ट मस्त स्ट्रांग हो चुका है या नहीं, ये देखने के लिए भी ये स्ट्रेस टेस्ट की जाती है। सो एवरी हार्ट अटैक के बाद मेरे हार्ट में डैमेज हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए एक तो 2D को होता ही है, लेकिन मेरे हार्ट की जो एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी है, मैं कितना एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कितना दौड़ सकता हूँ, कितना स्ट्रेस ले सकता हूँ, ये देखने के लिए स्ट्रेस टेस्ट करनी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। इसे डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर सानी, आपने जो हमें बहुत डिटेल में गाइडेंस दिया है रिगार्डिंग एंजियोप्लास्टी, बाईपास, उसके क्या फायदे हैं, क्या नहीं है, कहाँ पे वो काम करेगा, कहाँ पे नहीं काम करेगा, इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि 2D एको हो गया, एंजियोग्राफी विद FFR और स्ट्रेस टेस्ट, इनके बारे में आपने जो जानकारी दी है, VO2max के बारे में जो आपने जानकारी दी है, और क्यों हमने स्ट्रेस टेस्ट से नहीं डरना चाहिए, इन सब के बारे में जो आपने हमें डिटेल में और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये पॉडकास्ट आप दोबारा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर के कुछ तथ्य हैं जो आपने ध्यान में रखने बहुत जरूरी हैं, और सिर्फ अपने तक ही नहीं इसे सीमित रखना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सब की तरफ इसे भेजिएगा। लेट एवरीबडी अंडरस्टैंड, सब सुने, सब समझे इसे और अप्लाई करें। याद रखिए, जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल पे काम कीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है आपका VO2max बढ़ाने में, आपका हार्ट अटैक के खिलाफ और अन्य बीमारियों के खिलाफ बचाव करने में, और यही एक फैक्टर बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपकी जिंदगी को हेल्दी बनाए रखने में। सो हेल्दी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़ते रहिएगा। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, मैं डॉक्टर अमन कपूर आप सबसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।
When your furnace or air conditioner quits, you need it fixed, fast. This is Dennis Sullivan, president of CARE Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again, without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win the Lennox Partner of the Year Award and a BBB Torch Award for Ethics last year. So, call CARE Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
Get your shopping done right this holiday season with Big Air Columbus. Right now, you can get $100 off Elite Player Passes at Big Air, which is unlimited play all day, any day. Or buy one $25 gift card, get a free pair of holiday grip socks, plus a 1.5 hour pass to use after the new year. Big Air is the perfect gift for the kids in your family. So get your holiday shopping done right with Big Air Columbus. Stop by today inside Fieldhouse USA at the Polaris Mall or online at BigAirUSA.com.